प्रभा गिरिवार धारे यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी इज राधा माधव कुंज विहारी इज राधा माधव कुंज विहारी इज राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरा भक्त वृंद जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बलराम जय कृष्ण बलराम राधे श्याम जय राधे श्याम गौरनिताय जय गौरनिता जय प्रभुपाद 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 जय 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 विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य दशरथ सत श्री श्रीमद अभयरण चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कुटी वैष्णववृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंद की गोप गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की राजगोबर धन की पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुद्रा महारानी की द्वारका धाम की नवदी मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय अंग नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातम वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम् अहम् ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदाम्बजं ददाति सपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सदिवं साधितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखनितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिण वंशा कल्पतरु भस्य कृपा सिंधु भैव च पतितानं पावने वैष्णवेव नमो नमः नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः पञ्चतत्मादकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताखं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितौ गौड़दय पुष्पवंतौ चित्र सुंदौतमानदौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में बा बलराम हमें आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन और नमन करता हूँ। आप सभी लोग को ज्ञात है कि आज बहुत ही पावन तिथि बा पावन दिवस है कि जगन्नाथ जगन्नाथी का स्नान यात्रा महोत्सव बा उनका प्रकट दिवस भी है। तो आज हमारे जगन्नाथ मंदिर में लगभग भक्त लोग आज अभी सुबह से इकट्ठे होंगे शायद, क्योंकि हर साल 10:30-11 बजे अभिषेक चालू होती है। इसी वजह से हमारे मैनेजमेंट सुबह से चालू करके रखे हैं। तो सभी लोग को आमंत्रित है कि क्लास के बाद आप लोग जगन्नाथ मंदिर जाइए। कृपाल बाबा का आश्रम सामने जो सराफा हॉस्पिटल है उसका पास जसोदानंदन धाम है, वो गली में आप जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर की पहुँच जाएंगे। तो इसे ब्रह्म पुराण में मादला पांजी नीलाद्री महोदय जगन्नाथ पुराण खास करके हमारे जो उत्कल खंड है स्कंद पुराण का अंतर्गत जिसमें जगन्नाथ का बारे में आलोचना हुआ है उसको ही प्राणमाणिक माना जाता है। इसी तरह जगन्नाथ का बारे में बहुत सारे किंवदंती है वेद उपनिषद में भी। तो हमारे जो चार युग होते हैं उससे एक सत्य युग भी होती है तो पहला युग है। तो उसी समय का बात है कि एक सूर्य वंश का राजा जो कि ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्थ है, दिन को एक दिन को दिवस को एक प्रार्थ का रात को एक प्रार्थ तो दो प्रार्थ जो संख्या का जो अंतिम संख्या है। तो ब्रह्मा के जहाँ द्वितीय प्रार्थ में उनका पंचम अध्यस्तन रूप में सूर्य वंश विख्यात वंश जो चंद्र वंश और सूर्य वंश है, ये सूर्य वंश का एक राजा हुआ करते था, वह उस समय हुआ करते थे। उनका नाम था इंद्रदमन महाराज। क्या नाम था जी? इंद्रदमन महाराज। ये सत्य युग की घटना है। तो आज से हम हिसाब करें तो 17,28,000 साल सत्य युग का, 12,96,000 साल का त्रेता युग का, 8,64,000 का द्वापर का और 4,32,000 का आप हिसाब करने से कितना बड़ा संख्या होगा आपको ही मालूम है। तो सत्य युग में इंद्रदमन महाराज आजकल इतिहास के हिसाब से जो उज्जैन है, पहले में उसको माड़व कहा जाता जो कि मध्य प्रदेश में किशोरनाम जहाँ पर और संदीमुनि मुनि का पास में अध्ययन किए थे, 64 दिन में 64 विद्या को अध्ययन किए थे। तो वो राजा ने वहाँ माड़व राज्य में बा अवंती में, और एक नाम अवंती है, एक नाम अवंती है, एक माड़व है, एक उज्जैन है अभी का इतिहास में। तो राजा बहुत ही विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे, प्रजा को इसी भाव से पालन करते थे कि अपना पुत्र पुत्र बहुत पालन करते थे। आजकल नेता लोग तो इतना नहीं होते हैं क्योंकि वोट लेने के बाद पता ही नहीं चलता है, फिर 5 साल का बाद मुंडी दिखा देता है। जो भी हो तो राजा विष्णु भक्त होने के नाते सारे के सारे प्रजा भी विष्णु भक्त थे, क्योंकि सत्य युग में कोई वर्ण का विवाह नहीं थे, एक ही वर्ण था, ये द्वाप त्रेता से चालू हुआ वर्ण विवाह का। तो राजा ने हर दिन, अभी जैसे हम लोग बलराम हॉल में जगन्नाथ जी का लीला स्मरण करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हर दिन उनका राजसभा में भी और भगवान का गुण कीर्तन हुआ करता था। जैसे राजा ऐसे प्रजा, युग भी ऐसे ही था, क्योंकि उसमें पाप का एक बूंद भी निशान नहीं था उसमें। फिर धीरे धीरे पे पाप का परिणाम आने लगा और कलि युग में तो पाप का ही प्रभाव ज़्यादा है। जो भी हो तो राजा हर दिन भगवान का गुण कीर्तन किया भी करते थे, आराधना करते थे, भगवान का नाम जप और वेदादि रामायण महाभारत अध्ययन भी किया करते थे और पुराणा देवी कथा सुनने का और उनका रुचि भी बहुत थी, क्योंकि हमारे जो नवधा भक्ति है उसमें पहला जो भक्ति का अंग है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम बंदन दास्यम सख्या स्मरण निवेदनम। तो उन्होंने तो श्रवण किए थे लेकिन इस श्रवण का तीव्र इतना आगे बढ़ा था, उनका इतना रुचि हो गया था, क्योंकि जो नवदा भक्ति में आप कोई भी अंग को एक निष्ठा से पालन करते तो भगवत प्राप्ति होगा। तो आज उनका निष्ठा बढ़ गई थी इसीलिए उन्होंने भगवान को दर्शन करने के लिए उनका उत्कंठा हुई बा इच्छा हुई। तो भगवान इसे वैकुंठ में होते हैं ये सबको मालूम है, लेकिन वैकुंठ का ऊपर 50 करोड़ जन का ऊपर में गोलोक वृंदावन विद्यमान है। सर्वोपरि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु का 4 हाथ मतलब वो सबसे बड़े हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्म संहिता में हम पाठ करते हैं बा भी दर्शनार्थी में भी स्तुति करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण अर्जुन श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमह बोधामी। तो आदि व अनादि है भगवान कृष्ण। तो जो भी हो तो उन्होंने जो ये सभासद थे, उन्होंने पूछे विष्णु कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, उसका कोई पता मोबाइल एड्रेस वा व्हाट्सअप का नंबर उनको कोई दे नहीं पाया। लेकिन उनका उत्कंठा इतना तीव्र हुई थी तो भगवान का कृपा आज होने वाला था, जैसे यशोदा माता ने उनको जीत बांध लिए कि उसको पकड़ के आज बांधे ही लूंगा रस्सी में, तो भगवान भी अंतिम में बंध गए, प्रेम से बंध गए, इंडिया रस्सी में बंध गए। तो भक्ति का वश में भगवान होते हैं। तो आज वहाँ पर सभासद का बीच में बराज सभा में एक सन्यासी विद्यमान थे, जो सन्यासी का नाम था श्यामानंद। क्या नाम था? श्यामानंद। तो वो सन्यासी ने बतलाए कि उड़ीसा प्रांत में उड़ देश में आज दक्षिणी नदी का समुद्र का दिशा तरफ है एक ये पहाड़ है, वह घना जंगल है, वह गिरी है, नीला पर्वत है, नीला गिरी है, और समुद्र का तट में ये पूरी बसा हुआ है। और वहाँ पर उसमें जब भगवान का नाम जगन्नाथ नहीं था, उसमें क्या नाम था? हाँ जी, क्या नाम था पता नहीं है, उसमें नीलमाधव होता, नीलमाधव भगवान है की। तो उन्होंने नीलमाधव का नाम लिए नहीं, लेकिन बतलाया कि इसी दिशा में इसी राज्य में है। तो फिर तुरंत ये बात बतला के उन्हें फिर अंतर ध्यान हो गए। तो उनका जो दर्शन करके आँखों का और तीव्र हो गया, लेकिन जाए कौन, उसको ठिकाना लाए कौन, कोई बुद्धिमान हो, चलने वाले हो और स्थान काल पत्र का ज्ञान होना चाहिए एक देश से दूसरा देश को जाने के लिए। तो उसमें पता चला है कि उनका जो कुल पुरोहित थे उसमें उसका छोटा भाई था विद्यापति, क्या नाम था जी, तो उनको और ठीक किया गया कि उड़ीसा प्रांत में जाने के लिए। और चार तरफ और तीन तरफ भक्त आयोग दूसरा मंत्री और भी सेनापति आदि को भेज दिया गया। तो विद्यापति ने फिर शुभ मुहूर्त देख के पूजा पाठ करके फिर रवाना हो गए। तो रवाना होते हुए उन्होंने फिर भूख प्यास से पीड़ित होते हुए यहाँ से हमारे वृंदावन से लगभग 1600 किलोमीटर, तो उज्जैन से तो थोड़ा कम होगा क्यों यहाँ इसका बाद ही मध्य प्रदेश आता है, जो भी वो इतना रास्ता अतिक्रांत करके उन्होंने फिर वहाँ पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे ना, अभी जो जहाँ पर हम भव्य मंदिर देखते हैं, तो उसी समय मंदिर तो नहीं था, उस समय वहाँ और एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था विश्वावसु सबर। क्या नाम था? तो उनका राजधानी था। अरे ये विश्वावसर सबर ने ये नीलाद्री वा नीलगिरी पर्वत में एक गुफा में और वा कंदरा में ये नीलमाधव का पूजा किया करते थे। तो शास्त्र में वर्णन है कि जो नीलमाधव का जो शिव विग्रह था मार्बल का नहीं था, और जो नीलम धातु का जो अष्ट धातु में एक नीलम बल्कि जो मणि है वा रत्न है उसी धातु का था, उसको देवताओं को पूजा किया करते थे। तो कालांतर में विश्वावसु का भक्ति से भगवान बस हुए और उनका पूजा लिया करते थे। तो शाम का समय में थके मंदे हुए विद्यापति वहाँ पहुँचे थे, उस समय विश्वावसु सबर वहाँ नहीं थे क्योंकि भगवान का सेवा के लिए सुबह जाते थे शाम को आया करते थे। तो विश्वावसु सबर का बा महाराज जी का एक नौता बेटी था, उनका नाम क्या था? ललिता, ललिता देवी की। तो शास्त्र का वर्णन का अनुसार हमारे जो वर्णाश्रम धर्म जो नीति रिवाज रहे गृहस्थाश्रम का व अतिथि संस्कार के बारे में उनको अच्छा से प्रशिक्षण किया दिया था, इसलिए जब अतिथि आए अतिथि देव भव, तो विद्यापति ब्राह्मण को उन्होंने बहुत थाट पाट से उल्लेखम किए बा स्वागत किए, पाद अर्घ्य प्रदान किए, और करना भी चाहिए क्यों ना, कभी कभी भक्तों को परीक्षा करने के लिए भगवान कभी कभी ब्राह्मण का वेश में भिखारी वेश भी आ जाते हैं, जो भी हो तो उनको बहुत थाट बाट से अभ्यास और स्वागत किए, वेलकम किए, और थके मंदे होकर आए थे भूख प्यास से, इसलिए उनको खान पान का भी व्यवस्था कर दी एवं उनको रहने का भी व्यवस्था कर दिए। तो संध्या समय जो विश्वास विश्व सभा ने महाराज ने आए और नीलकंदर सेवा भगवान को पूजा करके आराधना करके, तो अगरु चंदन आदि जो लेप हुआ था उसी सुगंध से आश्रम सुगंधित हुआ करता था। लेकिन आज खुशी का सीमा नहीं था किसका, ललिता जी का, क्योंकि माताएं जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, स्वाभाविक शंकर भगवान माता दुर्गा का पास अच्छा पति के लिए खोज करते हैं, तो बिना बोले आज आ गए हैं, उनका आशा मन में है। लेकिन विश्वास बसु सवर को जब खबर दिया कि ब्राह्मण देवता आए, उनका भी खुशी का सीमा रहा नहीं, क्योंकि भगवान बताते हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। तो भगवान अपना मुख से खाएगी नहीं, वो तो भक्त को पाता है, अवश्य भक्त का विश्वास होता कि भगवान खाते हैं, इसलिए भोग भी लगा जाता है। लेकिन भगवान बताते हैं कि कोई भक्ति से नहीं देता तो मैं तो खाऊंगा नहीं, जैसे दुर्योधन का 56 बहु ठकरा दिए, जो भी हो। लेकिन भगवान बताते कि मैं ब्राह्मण का मुख से खाता हूँ, तो ब्राह्मण का पद कितना उच्चा है देखिए। तो कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, ये वैदिक ब्राह्मण होना चाहिए। समदम तपसुच खांति आर्म बच्चो ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वावधने 9 गुण होना चाहिए और 6 कर्म होना चाहिए, पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिग्रह। तो विद्यापति ब्राह्मण आए हैं अमर अतिथि का हिसाब से, जो सुने कौन महाराज विश्वास हो तो उसका आनंद का सीमा रहा नहीं। तो हर दिन का सेवा का दायित्व तो ललित का हाथ में सौंप दिए, और हर दिन पर नित्य नियमित उन्होंने अपना भगवान का सेवा करने के लिए जाया करते थे। लेकिन कालांतर में अभी काम तो दूसरा उद्देश्य आए कौन विद्यापति जी ने, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ कुशासन में पवित्र आसन में बैठे के उपवास करके रहे, जैसे हम निर्जला एकादशी एकादशी उपवास करते हैं, उसी से भी हमारा बहुत सारे इच्छाएं रहती है। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज भगवान को जब तक दर्शन नहीं मिलेगा बा उसका खबर नहीं मिला तब तक पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे, जैसे ही निर्जला एकादशी में आप लोग किए। तो हर दिन ये सुगंधी और सुभाष का आभास हुआ था किसको ना, विद्यापति को महाप्रसाद मिलता था। अब महाप्रसाद मतलब भगवान का कृपा है, महाप्रसाद है गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे स्वल्प पूर्ण बताए राजन विश्वास नैव जायते, जिसका अल्प पुण्य है भगवान का नाम में वैष्णव में एवं भगवान का प्रसाद में विश्वास होगा नहीं। और जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, तो भगवान का प्रसाद का महिमा का बारे में तो बहुत शास्त्र में वर्णन है, आगे जाके समय मिलेगा तो बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि आप तुम्हारे जो पिताजी हर दिन सुबह से शाम तक तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और शाम को लौट के आते हैं, जब लौट के आते हैं तो प्रसाद तो भी मिलता है, लेकिन किसका प्रसाद है, और उनका शरीर से चंगन अगुर इत्र का और सुभाष का आभास होता है। लेकिन पिताजी बतला दिए थे कि इसका बात बाहर में कहीं प्रकट नहीं करना, जैसे जगन्नाथ जी का नवखड़ेवर का भी ऐसे ही था, लेकिन प्रकट तो हो गया। जो भी हो तो प्रकट होना ही था, तो और ललिता जी ने बोले पिताजी मेरे को मना किए, मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये नीलमाधव कालांतर में भगवान का आर दूसरा सेवा लाना था, दूसरा राजा का पास बा भक्त का पास, इसलिए बीच में इंद्रद्युम्न महाराज को सिग्नल दे दिए थे कि मैं तुम्हारे पास थे कंदमूल आओ, जो भी फल मूल बहुत दिन खाया है और खाऊंगा कुछ दिन के बाद, फिर मैं राजभोग का चाहिए मेरा, मैं दूसरा जगह में चला दूसरा भक्त का सेवा ग्रहण करूँगा। उसी डर के मारे से इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ तो आर आकांक्षा करके बैठे हुए, अरे ये दूसरा भक्त ले जाएंगे भगवान को, इसी डर से मार्ग से ने ललिता को बतलाई थी इसका संदेश किसी को नहीं बताना। लेकिन पति का अनुरोध से उन्होंने प्रभावित हुए और बोले कि मैं तो इसके लिए आया हूँ। उन्होंने बतला दिए कि भगवान का सेवा करने के लिए सुबह से शाम जाते और वहाँ नीलमाधव है, उनका खुशी का सीमा रहा नहीं, क्योंकि उसी के लिए अभी इतना दिन तक यहाँ अवस्थान किए हैं। इतना ही नहीं, विद्यापति ने पहले विवाहित थे, लेकिन यहाँ देखिए भगवान के सेवा के लिए उन्होंने फिर दोबारा शादी कर लिए किसी को ललिता जी को। तो ऐसे है कि जब कोई पुत्र संतान उत्पादन नहीं होते वा नहीं होते तो बिना परमिशन से पत्नी से शादी नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ एक सिद्धांत देखिए कि ब्राह्मण वो कोई भी कुल से ग्रहण कर सकते हैं, ये शास्त्र में प्रतिपादन किया गया। तो कालांतर में वा कुछ दिन का बाद उन्होंने फिर उनको अनुरोध करते हुए फिर उसको फुसला लिए और पतिदेव का बात भी टाल नहीं सके। तो उन्होंने फिर पिताजी को जो निवेदन कर दिए तो उन्होंने बोले मना कर दिए, मैं तुम सर्वनाश कर दिया क्योंकि माँ मेरा जो पान पोखर को हम तुम छीन लेने का व्यवस्था किया। लेकिन बोले कि एक शर्त में मैं उनको लेके जाऊंगा कि उनको मैं आँख में कपड़ा बांध के ले जाऊंगा, पट्टी बांध के ले जाऊंगा, ये शर्त में वो राजी है तो मैं लेके जाऊंगा। तो अभी तो राजी होना ही था तो उन्होंने क्या किए ना पट्टी बांध दिए विशाल सबर ने और सुबह सुबह उनको पैर निरकंदर व निराद्री पर्वत का तरफ ले चल दिए। और ललिता बहुत चालाक थी, बुद्धिमती थी क्योंकि जे कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। तो उन्होंने देखे कि इसके लिए आए तो बाद में यदि आएंगे लेने के लिए निर्माधव को तो बाबा भगवान को उनको पता नहीं चलेगा ये घना जंगल में अगना आगनी जंगल है क्योंकि बहुत सारे हिंसर जंतु भी वहाँ विद्यमान, बाघ वल शेर हाथी आदि। तो उन्होंने क्या किए सरसों का कुछ दाना उनका उत्तरी में बांध दिया। आप बोले पतिदेव आप जब जाएंगे इसको बूते हुए चल जाना। अब महाराज विशाभसुर आगे चलते हैं आराधना का सामग्री लेते हुए। फिर धीरे धीरे उन्होंने जब वहाँ पहुँचे वहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य दर्शन किए क्योंकि आप जिन लोग पूरी धाम दर्शन किए हैं जगन्नाथ मंदिर उसमें आप जो अब सिंह दरवाजा से दर्शन करते हैं पहले आप वहाँ जमराजा का सिरा दर्शन करते हैं और काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं, बाएं तरफ आपको जो रुसेसाल दर्शन होता है और उसमें आपको सत्यनारायण और वहाँ पर आपको आता है आपका अक्षय वट आता है वहाँ बाल मुकुंद अंगूठे चूसते हुए और विद्यमान एक खिड़की से दर्शन होता है। आजकल पहले तो डायरेक्ट दर्शन होता था बस सीधा दर्शन होता उसका बाद आपने वहाँ कई सारे शंकर भगवान का लोकनाथ निकटेश्वर कपूतेश्वर बेलेश्वर एवं मोड़मास का भी मंदिर दर्शन करने के बाद मुक्ति मंडप आता है जो ब्राह्मण लोग ऊपर में बैठे रहते हैं वहाँ दूसरा कुछ का अधिकार नहीं है। तो उसका बाद एक कुंड आता है जिसका नाम रोहिणी कुंड है। क्या नाम जी? रोहिणी कुंड। जो वहाँ विश्वास सबर और विद्यापति ने पहुँचे बहुत आश्चर्यचकित हुए एक दृश्य देखे विद्यापति कि एक कौवा ने वहाँ जंप लगाया छलांग लगाया और पानी में और भगवान का धाम चल दिया। दिव्य शरीर मिल गया उनका सर्प मुक्ति भगवान का पार्षद बन के। तो विद्यापति सोचे कि अरे भगवान का बात छोड़ दो जाने दो महाराज उधर तपस्या करते रहे बिना तपस्या में तो भगवान मिलने वाला नहीं है। अभी हमारा काम तो कम से कम अरे कर ले क्योंकि जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो उन्होंने भी मन में सोचे कि मैं भी यहाँ कूद लेता हूँ अब वैकुंठ चला देता हूँ। लेकिन आकाशवाणी हुआ कि विद्यापति जी आप जो काम के लिए आए हैं वो तो काम तो सिद्ध नहीं हुआ है, आप ये काम करने आप करिए मत। तो उन्होंने फिर धीरज धारण किए। उसका बाद उन्हें फिर विश्वास सबन ने महाराज ने भगवान का अभिषेक आदि किए एवं भगवान का श्रृंगार आदि करने का बाद फिर भोग लगाए कंदमूल जो भी था छप्पन भोग तो उस समय नहीं था। तो हमारे जैसे इस्कन में भक्त लोग पिज्जा पास्ता भी लगाते थे कि नहीं भगवान को, लेकिन पूरी मंदिर में कभी ना हुआ ना होगा। तो ने कंदमूल फल सब भोग लगाए, लगाने के बाद फिर उनको फिर आँख में पट्टी बांध दिए क्योंकि आज भगवान को ले जाने वाला आए हैं इसको आभास हो चुका था पहले भी, अभी हो रहा है वो पट्टी बांध के फिर दोबारा उसी रास्ते में आए। लेकिन अभी तो काम तो निशाना उन्होंने काम कर दिए थे, सुरस का बीज बो दिए थे। तो आने का बाद बाबा इतना भाव भी बुढ़े भगवान के लिए और हमको भी ऐसे होना चाहिए। रोमांचकम पास तरंग भाज वंदे गुरु से चरणारविंद। लेकिन हमारे होता कि नहीं आपको, हमारे तो होता नहीं आप लोग का होता होगा शायद। तो भाव विपुल होके उन्होंने इतना नाराज हो गए कि बोले बदमाश तुम और भगवान को लेके प्राण प्रकार को लेके चले जाओगे, ये उसको रस्सी से पीछे तरफ बांध दिए, पीछे तरफ बांध के पेड़ में बांध के लड़का के चले आए। आगे देखे कि ललिता जी यार बहुत चंचल है, अभी पतिदेव आए नहीं, बहुत दुखी हो गए। पहले पिताजी तुम्हारा दामाद कहाँ है? बोले है पागल को मैं बांध के आया हूँ। तो उन्होंने पहले रोते हुए वहाँ से भाग के चल दिए, जाके पहले उसको रस्सी से मुक्त कर दिया, बाबंदी बंधन से मुक्त कर दिए। आने के बाद विद्यापति ने बताया कि मैं जिस काम के लिए आया था, मेरे काम आपका कृपा से तुम्हारे मदद से और मेरा काम सिद्ध हो गया, मैं अभी उज्जैन व माल प्रदेश का तरफ में रवाना हो जाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि अभी तो मैं अंतसत्ता हूँ, गर्भवती हूँ, आप मेरा को एकांत में छोड़ के कैसे जाएंगे? मेरा का हालत कौन क्या होगा? मेरा को कौन देखभाल करेगा, पालन पोषण करेगा? तो उन्होंने बोले इसे बात नहीं, मैं फिर दोबारा आपस आऊँगा। तो महाराज को संदेश देने के लिए आज इंद्रदुम्न महाराज इधर कुशासन में बैठे हुए हैं। तो कितना दूर देखिए, आने जाने का कितना समय लगा, कितना देर रुक गए वहाँ। तब तक इंद्रदुम्न महाराज ने कठिन कठोर तपस्या से बैठे हुए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। इसलिए हमको भी उनसे सीखना चाहिए कि क्या करना चाहिए भगवान के लिए। इसे कहा जाता है भक्तिर केवल भक्तिर बस चैतन्य गुसाई, ऐसे नहीं, तपस्या जरूरी है। तो जो भी हो तो उनको सांत्वना देते हुए और विद्यापति ने फिर पुनः उड़ीसा प्रांत से भारत देश में उज्जैन में आए और राजा को ये संदेश दिए। संदेश देने का बाद राजा का आनंद का सीमा रहा नहीं, वो उन्होंने पूरा उस समय डुगडुगी का व्यवस्था था, डुगडुगी बजा के पूरा राज्य में आओ बता दिए कि अभी मैं जा रहा हूँ आप भगवान से मिलने लिए, भरत भगवान के दर्शन करने के लिए, तो जिन लोगों को हमारे साथ जाना चलिए। तो सारे के सारे लगभग जितना भी भक्त थे अपना और चार वर्ण चार आश्रम वाले सारे के सारे उनका साथ चल दिए। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, उनका सेना सामंत्रित थे। तो जब उड़ीसा प्रांत में पहुँचे विशाखापत्तनम का सबर का पल्ली में व राज्य में, उन्होंने फिर घोषणा कर दिए युद्ध का, घेराव कर लिए पूरा विशाखापत्तनम सबर का जो पुर था व राज्य था। घेरा करने के बाद और उनको बांध भी दिए, क्यों कि उस समय जगन्नाथ मना नीलबाधव वहाँ नहीं थे, क्योंकि अंतर्धान हो गए थे, क्योंकि उनको जगन्नाथ रूप में प्रकट होना था। तो जब वहाँ विद्यापति बोले कि यहाँ ही नीलकंदर में नीलमाधव पूजा आराधना विश्वावसु सबर ने क्या करता इसी जगह में, लेकिन बोले तुम झूठ है, तुम झूठा है, तुमको हमको धोखा दे दिया। बोले नहीं महाराज, यहाँ ही पूजा किया करते थे। तो उन्होंने फिर विश्वावसु सबर को बांध दिए प्रारसी से। तो आकाशवाणी हुआ कि मेरा को इसी रूप में तो कभी दर्शन नहीं कर सकते, तुमको जाना पड़ेगा बांकी महान जो चक्र तीर्थ है, जो क्षेत्र परिक्रमा होती है। तो हम परिक्रमा करते हुए जो समुद्र किनारे जाते चक्र तीर्थ वहाँ बांकी महान है, तो वहाँ आप जाइए, अब दारू विग्रह रूम में मेरे को दर्शन मिलेगा। तो महाराज उनको बंधन मुक्त कर दिए, क्योंकि ये भी महाराज थे वो राजा थे। तो विशाखापत्तनम महाराज को बंधन मुक्त कर दिए और दोनों मिल के वहाँ गए, खोल करताल मृदंग लेके भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन यहाँ भी आश्चर्यचकित घटना देखिए, तो वहाँ और दो तरफ रे दो भक्त पकड़े तब वहाँ से लेके आए सकट से। अभी भी जब नवकलवर होता है नया सकट बनता है, सकट बनता है और लेके आते हैं। तो लेके तो आए, लेकिन कारपेंटर कारीगरी कौन है, ऐसे राज्य में फिर अनाउंस कर दिया गया, लेटर दिया गया, चिट्ठी दे दिया, पत्र दिया गया। लेकिन सारे के सारे कारीगरी आए, शिल्पी आए, लेकिन बताया कि क्या है, क्योंकि जगन्नाथ का रूप, बड़े बड़े आँख, ये छोटे छोटे हाथ तो देखे नहीं थे कहीं, तो बनाएंगे कैसे? अरे बनाने का बात तो दूर देखिए, उसका छिलका निकलना भी मुश्किल हो गया जितना भी आर्किटेक्ट कारपेंटर वाला कर रहे थे, क्योंकि भगवान का दिव्य दारू विग्रह था, दिव्य शरीर था। तो सभी लोग के सभी कारपेंटर व कारीगर शिल्पी सब हताश हो गए, अभी क्या होगा, राजा यदि गुस्सा में आ जाएंगे सबका मुंडी गर्दन उड़ा देंगे। क्योंकि जब कोणार्क मंदिर बना हो रहा बन रहा था, उसी समय चूड़ा नहीं बन रहा था, लंगड़ा नृत्य देव राजा ने बना रहे थे। तो उनमें एक हेड था बा मुखिया थे धर्मपद का पिताजी, तो उनको बोले काल नहीं बंधेगा, चूड़ा यदि नहीं बंधेगा सारे के सारे जितना भी 1200 बढ़ई है जितना भी आर्केट के सबका गर्दन उड़ा दूंगा। क्यों, राजा तो राजा ही होते हैं, इसलिए कहा जाता कि राजा और नदी जो कोटा स्त्री को कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, जिनका पास अस्त्र है जिसका पास नाक दंत और दांत वगैरह है उन लोग को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ओ सभी डर गए थे कि आज राजा दीदी हम ये विग्रह नहीं बना दे, भगवान का स्वरूप नहीं बना सकते हैं तो क्या होगा। तो उनका जो जितना भी सामान था बनाने वाले का, तो जितना भी हथियार पत्र था वो छूते हुए टूट जाता था, सब परेशान थे सब लोग। तो उसी समय भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़ा ब्राह्मण शिल्प के रूप में आए, वो आँख पूरा झूल गया था, नाक से पानी निकाल रहा था, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, थर थर का काम पर रहे थे। उन्हें आज के बोले कि यहाँ क्या हो रहा है राजसभा में, तो बोले नहीं यहाँ एक बहुत बड़ा और सभा आयोजन हुआ है और इंद्रदुम्न महाराज ने ये दारू विग्रह लेके आए हैं और जगन्नाथ जी का और विग्रह बनाना है। ठीक है, तो सभी लोग अविश्वास के, ये बूढ़ा लोग आदमी है ये तो मर जाएगा, हमारे इतना बड़ा बड़ा जवान कारपेंटर का जो हथियार भी था हम भी कुछ नहीं कर पाए, छिकल छिलका तक नहीं निकल पाए, बूढ़ा क्या करेगा, हमारा सब और समाज का बदनाम हो जाएगा। फिर भी राजा इंद्रदुम्न ने आप भरसा की गए बूढ़ा आदमी कोई ना कोई चमत्कार दिखाएगा, क्यों भक्त है ना, भक्त भक्त को पहचानता है, भक्ता माम जानाती। तो उन्होंने बोले ठीक है बाबा को लेके आइए। तो उन्होंने आए थर थर के कांपते हुए, बोले किधर है वो दारू विग्रह, तो फिर हाथ दे पकड़ा के बाबा को ले गए क्योंकि आँख भी उनका दिख नहीं रहा था। तो पास में ले गए हाथ वो उन्होंने चापड़ते हुए बा असहनाते हुए उन्हें परे अब नाखून से वो छिलका निकाल दिए, जो पेड़ का छिका छिलका था उसको निकाल दिए। तो इंद्रदुम्न महाराज को विश्वास हो गया कि ये महात्मा जी ने बना सकते हैं। तो उन्होंने बोले मैं एक शर्त में बनाऊंगा, एक ही दिन के लिए मैं के मेरा को एक कुठरी में एक घर में दरवाजा बंद कर दीजिए और उसका बाद अब बाहर में कीर्तन करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे, क्योंकि जगन्नाथ पुराण में इसे और वर्णन है कि उसका जो आवाज़ सुनेंगे बनाने का समझे ठोक ठाक आवाज़ होगा बहरा हो जाएंगे और अकाल हो जाएगा, कोरोना महामारी फैलेगा, इसीलिए कीर्तन चालू रहा और बाबा को अंदर पैकिंग कर दिया गया। और हर दिन इंद्रदुम्न महाराज एवं गुंडीचा माता महाराज का जो धर्म पत्नी थे आकर के उसको सुना करते थे कुछ आवाज़ हो रहा है कि नहीं। धीरे धीरे इसे होते हुए कितना दिन अतिक्रम हो गया, 2 हफ्ता 15 दिन। तो उसी दिन कोई आवाज़ नहीं बाहर निकल रहा था, तो गुंडीचा रानी ने बोले कि माता गुंडीचा माता ने बोले कि बाबा राम नाम सत्य हो गया होगा, नहीं तो फिर मोटर केस में हमको नामा आ जाएगा, इसलिए आप ये दरवाज़ा खोल दीजिए। तो महाराज ने बोले नहीं, उन्होंने तो बताया कि 21 दिन के लिए। तो माता ने जिद किए, क्योंकि माताएं जब जिद करते उसको सिद्ध करके रखते हैं। एक उड़िया भाषा में प्रवाद है कि राजा मन कले बरसे छमास, रानी मन कले दंडे। तो राजा कोई चिंता करते हैं कि बापा पिताजी लोग जब प्राण बालते हैं तो 6 महीने के बाद 1 साल लग जाता है, माताएं जिद करेंगे तत्काल कन्फर्म कर देंगे जो भी हो। तो जो दरवाजा खोल दिए, आप जो हम जो विग्रह देखते हैं ये भगवान का और हाथ छोटे छोटे बड़ा बड़ा आँख है और पैर हाथ पैर तो है ही नहीं। तो राजा का दुख का सीमा रहा नहीं, इतना तपस्या करने का बाद भगवान को प्राप्त हुए, लेकिन आज उनका हाथ नहीं और पैर हाथ टूटा हुआ है आधा है और आप पैर तो है ही नहीं, तो बहुत दुखी हो गए। तो भगवान ने बतलाया कि दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तो मेरा को सुने चांदी का रूप आप बना देने का, क्योंकि कोई बेस होता भगवान का उसमें 32 बेस मुख्यतः है, उसमें सोना बेस होता जो जैसे आज होगा ना, आज तो नहीं होगा सोना बेस, रथ यात्रा का समय होगा आज गजराज बेस होगा। तो भगवान बतला दिए कि तुम मेरा को सोना चांदी का हाथ लगा देने का, क्योंकि भगवान का हाथ पर तो है नहीं, दिखता नहीं, क्योंकि हमारे जैसे और भौतिक दृष्टि से कैसे हम देखेंगे, हमारे आँख का ऊपर एक पत्ता भी है, उसको हम देख पा रहे हैं, बहुत निकट है, देख पा रहा है कोई? आईना चाहिए, दर्पण चाहिए, तो वो दिव्य दृष्टि चाहिए गुरु का माध्यम से। तो भगवान जो बतलाए, लेकिन इंद्र दुम्न महाराज ने धीरे धीरे धारण किए, लेकिन भगवान को रखेंगे कहाँ? एक भव्य मंदिर चाहिए। जब भव्य मंदिर बन गया, बौलमाला बोल के एक पहाड़ है, वहाँ से इतना बड़ा बड़ा कई क्विंटल करके जो पत्थर है उसमें किरण फिर नहीं था, वहाँ से लेके आए और भगवान का भव्य मंदिर बन गया। कहा जाता कि नीचे 60 हाथ का, ऊपर भी 60 हाथ था, इसे 200 कितना फीट का मंदिर है अभी भी हम देखते हैं ये भौतिक दृष्टि से। तो बन गया मंदिर, लेकिन मंदिर प्रतिष्ठा कौन करेगा? तो नारद मुनि ने उनको बता दिए थे कि ब्रह्मा जी ही प्रतिष्ठा करते हैं, कर सकते हैं। तो इंद्रदमन महाराज अपना पुण्य फल से उन्होंने फिर ब्रह्मलोक के लिए रवाना हो गए। वहाँ भी भगवान का गुण कीर्तन हो रहा था, थोड़ा देर के लिए वहाँ रुक के यहाँ के इतना युग चला गया। तो वो जो मंदिर था वो बालू का हमें बालू में ढक गया। तो उसी समय और दूसरा एक महाराज वहाँ राजा हो गए, जो उनका नाम था गल्ल माधव। क्या नाम था जी? तो उन्होंने भी दखल कर लिया कैसे ना, एक दिन घोड़ा से बैठ के जा रहे थे, तो जो नीरचक्र हम देखते हैं अभी ऊपर में, सबसे ऊपर में, तो वो ढका हुआ था बालू का अंदर, समुद्र का अंदर, क्योंकि समुद्र उसमें बगल में ही थे, तो बालू में ढक गया था। तो उनका जो घोड़ा का खोर है ना, वहाँ फंस गया। तो उनको जो बालू निकाल दिए, देखे कि भव्य मंदिर है, तो राजा ने अपना बार कब्जा कर रखे थे, लेकिन इंद्रदमन महाराज तो उन्होंने ब्रह्मा जी को विनती किए कि हमारा मंदिर बन गया है भगवान का, और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना है मंदिर को पहले, और शोधन करना है, पवित्र करना है। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है मैं चलता हूँ। तो उन्होंने आए बोले कि भगवान का मंदिर तो पवित्र है, फिर भी उन्होंने और आग्रह करके लेके आए थे। तो यहाँ देखे कि दूसरा राजा बोले ये हमारे है, वो इन्होंने बोले मैं बनाया, बीच में फिर ढाल तोड़ाल लेके फिर लड़ाई चालू होने वाला था। लेकिन ये कौवा था इसमें, एक उसका नाम था काकभूषणी, क्या नाम था जी? तो उन्होंने बोले युद्ध करने का जरूर नहीं है, मैं प्रमाण साक्षी देता हूँ किसका ये मंदिर है। उन्होंने बोले इंद्रदमन महाराज बनाए, और उन्हें ब्रह्मलोक गए तब तक तुम दखल कर रहा, ये बात नहीं होगा। तो दोनों परम भक्त थे, विष्णु भक्त थे, इसलिए आपस में स्वतंत्रता करके फिर वहाँ विद्यमान रहे। तो ब्रह्मा जी ने अपना वैदिक मंत्र साज में एक झंडी बांध दिए, पताका बांध दिए जो नील चक्र का ऊपर में, बोले भगवान आएंगे तो पवित्र हो जाएगा। तो जगन्नाथ भगवान का और ये जो भव्य मंदिर, ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिष्ठा स्वरूप निशाना दिखाएगी और उन्हें झंडी व पताका बांध दिए, तो जिसका नाम पतितपावन है, क्या नाम है? पतितपावन वाना झंडी जो भी हो। तो ये तो बहुत कथा है। तो भगवान का जो जन्मदिन है खास करके दूसरा दिन नहीं है, आज ही वो जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन है। तो कहाँ पर भगवान जन्म लिए थे, उनका शिव विग्रह कहाँ बना था? अभी जो मंदिर है यहाँ नहीं बना था, यह इसको द्वारका का प्रतीत कहा जाता है। और जो गुंडीचा मंदिर है, जो सुंदराचल है, जो कि बड़ा मंदिर से बड़दांड में रथ जाता है, वहाँ 3 किलोमीटर दूर वहाँ भगवान का आविर्भाव स्थल है। यहाँ द्वारका है, वो वृंदावन का साथ तुलना किया गया है। तो भगवान का आविर्भाव वहाँ पर हुआ था, तो बार बार ये मंदिर बनाया तो यहाँ आए। तो जगन्नाथ भगवान का जो प्रकट दिवस में और भी कोई लीला हुई है, हमारे जो 12 मास में 13 यात्रा है, जो पहले यात्रा है भगवान का, इसे गुंडीचा रथ यात्रा कहा जाता है, लेकिन स्नान यात्रा देवस्नान पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवस्नान पूर्णिमा की। तो इसमें देवता लोग मनुष्य रूप में आके भगवान का अभिषेक किया करते हैं। पूरी मंदिर में अंदर में ही स्नान मंडप का बगल में एक कुआ है, सारा साल भर उसको बंद किया जाता है और उसमें पानी व्यवहार किया नहीं जाता है, लगभग काल एक दिन पहले उसको संस्कार किया जाता है, उसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक यार किया जाने का पहले वो मंदिर का और मंडप को भी सजावट किया जाता है, शोधन किया जाता है, और कितना घड़ा से भगवान को अभिषेक किया जाता है? हाँ जी 108। तो भगवान को इसे शास्त्र में बतला गया कि कोई सारे ब्राह्मण को बुला जाता है और सोने और चांदी का कलश से और अभिषेक किया जाता है भगवान का। वहाँ हमारे जैसे शंख जैसे अभिषेक नहीं किया जाता, वहाँ दूध दही मधु हनी से नहीं, वहाँ भगवान का पानी से ही अभिषेक किया जाता है। जैसे राधारमण जी का हमारे दूध से ही अभिषेक, राधारमण लाल की। तो पहले दिन उसको संस्कार किया जाता है और बंधन बार लगा के विभिन्न प्रकार का आप फूल फल से बार और शान मंडप को सजा जाता है। और भगवान जगन्नाथ के लिए 35 घड़ा का पानी और बलदेव के लिए 33 और सुभद्रा के लिए 32 घड़ा बा कलश से और सुदर्शन का जी के लिए 18, ऐसे 108 होती है। तो वहाँ पर भगवान का भव्य स्नान महोत्सव किया जाता, स्नान यात्रा महोत्सव किया जाता है। आज हमारे अभी सब चालू हो गया, आप लोग को जाना है कि नहीं? जाना है तो बंद कर दे, अभी 10 मिनट तो आपको बैठना पड़ेगा। स्नान यात्रा में अब यहाँ में कोई अंतर थोड़ी ना है, जो भी हो तो हम अवश्य जाएंगे, प्रसाद तो मिलेगा, कम से कम प्रसाद मिलेगा कि नहीं? प्रसाद लेना है आप लोग को। तो भव्य शान महोत्सव किया जाता है वहाँ पर। उसका बाद भगवान को एक वेश किया जाता है जो गणेश वेश है। क्या वेश है जी? गणेश का सामने क्या रहता है? सोन रहता है, हाथी का जैसे, क्योंकि शंकर भगवान त्रिशूल से उड़ा दिए थे होता गर्दन, एवं हाथी का गर्दन उड़ा के भगवान ने फिर उनको आरव सिर में लगा दिए थे। जो इसका बहुत महत्व है क्योंकि एक गणेश का भक्त थे, उनका नाम था गणपति भट्ट। क्या नाम था? वो दक्षिण भारत के थे, भगवान में बहुत निष्ठा थी, लेकिन उन्होंने कहा जगन्नाथ जी में नहीं, राम जी में नहीं, कृष्ण जी में नहीं, उनका गणेश आराध्य देव थे गणेश जी। क्योंकि आप जब मंदिर में जाते हैं तो आप रोहिणी कुंड का बाद आप जाते हैं, एक कुआ है वहाँ, उसका बाद विमला मंदिर जाते हैं, उसका बाद जब आप आते हैं तो वहाँ कांची गणेश रहते हैं, कांची का जो भगवान है वहाँ भी रहते। तो कांची से और सालू राजा से लड़ाई करके आर पुरुषोत्तम राजा ने लेके आए थे, उनका नाम भंड गणेश। क्या नाम जी? भंड गणेश, खाली गणेश नहीं, भंड गणेश। तो उनका भक्त थे। तो जो भी हो तो उन्होंने ब्रह्म पुराण में अध्ययन किए व पठन पाठन किए कि ब्रह्म कहाँ रहते हैं, कि आप पुरी में रहते हैं, इसलिए उन्होंने पदव्रज में पैदल ही दक्षिण भारत से आए। कौन से दिन था? आज का दिन था स्नान यात्रा, लेकिन उनको तो उनका तो आराध्य देव गणेश जी थे। तो वहाँ पर आपस आसपास में घूमने लगे, 52 बाजार है, 53 गली है, सारे जितना हमारे यहाँ जैसे कुंज गली है, सारे के सारे भगवान को ढूंढने लगे, लेकिन उनको उस रूप में दर्शन नहीं दिए भगवान ने। तो उन्होंने परेशान रहते, फिर लौट जा रहे थे। तो भगवान ने सोचे कि अरे इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा भक्त, वो बोलेंगे कि पुरी में ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, इसे कहा जाता कि वदन्ति तत् विदत्त जत् ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो ब्रह्म ज्योति में वो जो ध्यान करते हैं उनको और असली भगवान का आभास नहीं होता है, और परमात्मा को जो ध्यान करते हैं जोगी लोग ये भी परिपूर्ण नहीं, जो श्याम सुंदर रूप को दर्शन करते वो परिपूर्ण है। तो उन्होंने आए थे ब्रह्म को दर्शन करने के, पर ब्रह्म को दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने ढूंढते रहे, पूरा पूरी छाँट दिए, लेकिन उनको तो जगन्नाथ मतलब गणेश्वर में दर्शन दिए नहीं। तो उन्होंने फिर दुखी होकर वापस चले जा रहे थे। तो भगवान बोले कि अरे ये तो जाके फिर प्रचार करेगा, भगवान है ही नहीं, कोई आएंगे नहीं, भक्तों नहीं आएंगे तो हमारे सेवा पूजा कौन करेंगे। तो भगवान ने किया कि एक पंडित का वेश, ब्राह्मण का वेश दिखाओगे, फिर उनको दर्शन दिए। बोले महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी परेशान थे, टेंशन में थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो इतना दूर से आए, शास्त्र में पढ़े, अभी भगवान दर्शन हुआ नहीं। बोले आप बात मत करो, तुमसे बात करने का जरूर नहीं, फालतू मेरे को परेशान मत करो। बोले परेशान होने का बात क्या, क्या हुआ बताए? अरे मैं तो ब्रह्म को ढूंढने आया था, इधर ब्रह्म है ही नहीं, क्या बात करते हो, मैं अभी अभी मंदिर से आया हूँ, अब मैं देख के आया हूँ। तो ए झूठ मत बोलो, फिर धोखा मत देना, क्योंकि पढ़े लोग झूठा धोखा देने का उस्ताद भी नाम रहा है, क्यों पैसा पत्र नहीं देगा, दक्षिणा नहीं दे तो घर फिर आपको उल्लू बना देंगे, इसीलिए सावधान रहना। गाली तो बहुत बढ़िया देते देते थे, जो भी हो उन्होंने बोले विश्वास नहीं कर रहे थे, बोले भगवान बोले कि अभी मैं आया हूँ, अभी चलो आप मेरा साथ में दर्शन कराता हूँ। तब तक यहाँ पुजारी लोग क्या किए, वहाँ पर कहा जाता कि कोई सोल और केला का जो छिलका है, विभिन्न प्रकार सा वस्तु से उन्होंने विभिन्न प्रकार अठारह के ब्लू टेक लगा के एक गणेश वेश भगवान को बनाते, तब बहुत सुंदर वेश बना दिए थे। तब तो भगवान खुद इधर भी भगवान बैठे हैं शान को सोच करके, और उधर और उनको भी लेके आए, जो आज से गणेश गणपति भट्ट आके देखे कि अपना आराध्य देव वहाँ पूरा गजानन वेश में, उन्होंने फिर नाचरे कूदने लगे, रोमांच कम पास अष्ट सात्विक विस्कार होने लगा, तब से उन्होंने पूरी में ही रहे, इसे कहा जाता है। तो ये जो बारह हमारे जो 32 वेश है, उसी से हमारे ये 32 वेश से एक मुख्य वेश है। तो इसे सुना वेश होता है, गजो धारण वेश होता है, वनभोजी वेश होता है, कालिया दमन वेश होता है, रघुपति वेश होता है, नागार्जुन वेश होता है। नागार्जुन वेश में इतना महंगा इतना सामान लगता है कि संभव ही नहीं, हम तो कोई देखे नहीं शायद, देखे हैं आप लोग कोई नागार्जुन वेश देखे नहीं कोई? अरे कम से कम वीडियो में तो नागार्जुन वेश बोलेंगे तो देख सकता है, देख सकते हैं ना। तो जो भी हो दामोदर वेश, जैसे कि श्राद्ध वेश भी होता है, जैसे दशरथ महाराज कौशल्या ने अपना पिंडदान देने रामचंद्र भगवान दे, उस समय श्राद्ध वेश भी होता, जितना भी वेश होता है भगवान का ड्रेसिंग होता है वृंदावन का ही लगभग और ड्रेसिंग होता है, क्योंकि जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, जगन्नाथ बोलते सुभद्रा महारानी की। तो उन्होंने देख के और उनका निहाल हो गया, और भगवान का दर्शन करते हुए इसे कहा जाता कि उन्होंने गए नहीं पूरी से गणपति भट्ट। तो हम जब दर्शन करने जाते हैं तो हम लोग को मन आता है कि हम चले जाएं, लगता क्या, लेकिन बाध्य के पे आना पड़ता है। जो भी हो तो जो भगवान का ये 12 महीना में 13 यात्रा से ये मुख्य उत्सव है, उसका बाद जगन्नाथ जी का आपका गुंडीचा रथ यात्रा होता है। क्या होता है? क्योंकि भगवान अपना मौसी को बात दिए हैं, क्योंकि मैं साल में एक बार आऊँगा, इसलिए भगवान यहाँ से अपना बहन सुभद्रा एवं बलदेव को लेके वहाँ चल देते हैं। इसे बीच में बड़गंडी और भी माता का मंदिर आता है, उसका बाद भगवान जाते हैं हमारे मौसी का घर में। ऐसे सातरण वन है कि आप यहाँ 12 महीना में जितना भक्ति के मंगल आरती दर्शन आरती प्रसाद खा के नीलाचल में नीलगिरी में नीलकंदर में श्री मंदिर में, लेकिन भगवान जब मौसिका घर में रहते हैं आप एक बार मंगल आरती किया एक दिन दर्शन किए तो इतना ही फल मिलता है, यहाँ महीना भर वहाँ एक दिन में, तो वहाँ दर्शन करना चाहिए कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलिए, कौन कौन करेंगे? लेकिन हमारे मान्यता है कि गौड़ीय वैष्णव लोग भगवान को, भगवान द्वारका से आए थे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से ब्रजवासी लोग भगवान को ब्रज में लेके आए, तो उसी भाव से रथ खींचा जाता है। बड़ा मंदिर द्वारका से और सुंदर चलवा वृंदावन को ले जाते मौसी का घर में, उसका बाद हमारे कोई गौड़ीय वैष्णव वृंदावन जब पहुँच जाते भगवान, इसे तो बतलाए कि वृंदावन परित्यजन पाद में कम न गच्छति। तो भगवान जो मौसी का घर में जाते वहाँ से आते नहीं हैं वृंदावन भाव से, तो कोई ही भक्त आर उल्टे रथ में नहीं आते हैं, लेकिन इसमें कोई आर दुसावह नहीं है जिसका जो भाव है। तो भगवान का ऐसे बहुत सारे महिमा मंडित लीला है, अभी टाइम भी हो चुका है, तो आप लोग को संक्षेप में बा जो सार सार वस्तु में बतलाया, तो आप नीलाद्री महोदय मादला पांजी ब्रह्म पुराण स्कंद पुराण में आप भगवान का आविर्भाव और उत्सव का बारे में जानकारी प्राप्त हो सकता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शान यात्रा महोत्सव की, इंद्रदमन महाराज की, गुंडीचा माता की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। विद्यापति जी की। तो अभी सभी लोग आप लोग भगवान का शान यात्रा दर्शन करने के लिए व अभिषेक करने के लिए जगन्नाथ मंदिर का तरफ रवाना हो जाइए। यहाँ से जाने का बाद आप सीधे छठीग्रह रास्ते में जाएंगे तो कृपाण बाबे का जो हॉस्पिटल है उसका सामने आपका सराफा हॉस्पिटल है, उसे देवकीनंदन धाम है, उसका गली में आप जाएंगे, जगन्नाथ जी को अवश्य दर्शन करेंगे। और खाली हाथ में नहीं जाना, फल मूल जो भी जिसका पास जो है आप भेंट देना चाहिए, क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो भगवान चोरी करने का आदत है। कटहल कोई किसी को जैक फ्रूट मिलेगा तो जरूर लेके जाने का, अब कोई खिचड़ी बना के रखे हैं तो जरूर लेके जाने का। तो भगवान को पान भी प्रिय है, गजमुति का तो पान भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें आ रहे हो कोई दूसरा बह नहीं है, ये दे सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शान यात्रा महोत्सव की, जगन्नाथपुरी धाम की, समवेत भक्त वृंद की, जगत गुरु प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद, जय जय श्री राधे।